हेलो दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके अपने ज्ञानस्थली वाले स्टूडियो में। और हर रोज चूंकि हम लेकर आते हैं ज्ञानस्थली लाइव प्रोग्राम, जिसमें ज्ञानस्थली कॉलेज से डिपार्टमेंट का कोई ना कोई टीचर प्रोफेसर मौजूद होते हैं। तो आज हमारे बीच कंप्यूटर डिपार्टमेंट से मोहम्मद तबरेज जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं तबरेज जी।
थैंक यू अदनान जी।
थैंक यू। और चूंकि आप कंप्यूटर डिपार्टमेंट से आए हैं, ये सारी जानकारी हम कंप्यूटर पे कुछ सारे क्वेश्चंस हैं वो हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि अपने बारे में आप बताइए और साथ ही आप अब स्कूल के बारे में आपका क्या अनुभव है ये भी आप मेंशन करिए।
अदनान जी, सबसे पहले मैं अपने कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है जो ना हो।
ओके।
हमारे कॉलेज में शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन की सारी सुविधाएं दी गई है। और हमारे कॉलेज में जो सबसे अच्छी बात है वो है एकता। चाहे वह किसी भी धर्म का हो, सब एक साथ मिलकर अपने काम को बहुत ही प्रेम से और बहुत ही साथ दे करके एक दूसरे का करते हैं। ये हमारी कॉलेज की सबसे बड़ी अच्छाई है
जी।
और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने प्रिंसिपल मैम का, जो मैं इस कॉलेज में आज उनके वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं अपने बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ
जी ज़रूर,
कि मैंने अपने लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया है। जैसे कि मैंने इसकी शुरुआत, पढ़ाने की शुरुआत जो है 2004 से मैंने किया था, जब मैं छोटे बच्चों को वही मेरे ख्याल से एक से लेकर के पास तक मैं ट्यूशन पढ़ाता था।
ओके।
और बच्चों को घर घर जा कर के मैं 50 रुपए से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था ट्यूशन।
ओके।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं उस 50 से आज मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ। आज मैं ऐसे कॉलेज में हूँ जिसका नाम गुड़ा में बहुत ही ज़्यादा है। और ये पूरा श्रेय मैं अपने प्रिंसिपल मैम और मिस्टर दीपेंद्र सर जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मैं आज इस जगह पे हूँ।
बिल्कुल करेक्ट, तो होना भी चाहिए शुक्रगुजार, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे कुछ आपके मेंटर्स होते हैं, आपके कुछ बड़े होते हैं जो आपको एक्सपोजर देते हैं और लाइफ में आपको कुछ कर दिखाने का मौका मिलता है। तो आपने उनको सम्मान दिया, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। तो तबरेज जी, अभी चूंकि आप कंप्यूटर डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, कितने वर्षों से आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं?
जी मुझे तो अभी यहाँ पर 4 वर्षों से हो गए। इससे पहले मैं 2 घंटे के लिए मैं आता था पढ़ाने के लिए
जी,
तो मैं सेंटर से मैं अटैच था इस कॉलेज में। लेकिन अभी मैं 4 सालों से मैं परमानेंटली मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। और ये पूरा मैं दोबारा कहना चाहूँगा, ये जो श्रेय है वो आरती मैम के उस पर जाता है। उन्होंने मेरे पर भरोसा किया कि एक गर्ल्स कॉलेज में पहला मैं एक क्या कहते हैं मेल जो था, जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो उन लोगों को लगता था मैंने डिसीजन गलत लिया, लेकिन नहीं, मैंने पूरा उनका सहयोग किया और उनके जो भरोसा था उस पर मैं एकदम से खड़ा उतरा।
चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप उनके भरोसे में पूरी तरह खड़े उतरे। तो तबरेज जी, चूंकि आप 4 साल से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे देखिए क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन बहुत सिंपल आपसे पूछता हूँ कि कंप्यूटर क्या है?
देखिए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर जो हमारा शब्द है वो अंग्रेजी का एक वर्ड है कंप्यूट। कंप्यूट मतलब होता है गणना, ये किसी चीज़ को कैलकुलेशन करना ही कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जिसके द्वारा हम बड़े से बड़े कार्य को कम समय में और आसानी से कर सकते हैं। और हर जगह कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा महत्व है।
तो तबरेज जी, आपने बताया कि गणना करना कंप्यूटर का काम होता है, क्या हम कैलकुलेटर को भी कंप्यूटर बोल सकते हैं?
जी जी, क्यों नहीं, वो भी एक अपना गणना यंत्र है। आपको मैं इससे पहले भी अभी मैं बताऊंगा आगे कि क्या गणना यंत्र कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते थे पहले।
अच्छा
जी जी,
तो उसके बारे में भी आप हिस्ट्री पे भी जाके बताएंगे?
जी जी, मैं थोड़ा आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा,
ज्यादा
बताने लगूंगा तो बहुत ज्यादा क्लासेस चलने लगेगी, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस नॉर्मल आपको मैं बताऊंगा।
दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत कब हुई थी और क्यों मनाया जाता है?
देखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत जो है भारत की सबसे बड़ी कंपनी NIIT जिसके 20वीं वर्षगांठ पर इसको 2 दिसंबर को
जी
विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है।
तो इसको मनाने के पीछे वजह क्या होगी?
देखिए
जागरूकता,
इसकी वजह ये थी कि बच्चों में और महिलाओं में इसकी जानकारी प्राप्त हो, इसलिए यानी सबको एक डिजिटल बनाने का वो किया गया, इसलिए इसको जो है विश्व साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है।
तो तबरेज जी, चूंकि आप एक कंप्यूटर टीचर है, तो आपका अगर हम व्यू ले तो आपको क्या लगता है कंप्यूटर शिक्षा क्या सच में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है आज के दौर को देखते हुए?
जी जी, उसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि जो है आप खाना खाते हैं,
बिल्कुल,
खाना खाने के बाद आप पानी पीते हैं,
बिल्कुल,
क्यों पीते हैं?
डाइजेस्ट करने के लिए।
डाइजेस्ट करने के लिए। ऐसे आप बहुत सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो सब में आपको लास्ट में कंप्यूटर करना होता है। अभी जो नई शिक्षा नीति निकला हुआ है उसमें देखिए वोकेशनल में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट दिया गया है, और उसके अलावा भी आप छोड़ दीजिए हिंदी में आपका एक यूनिट है उसमें भी कंप्यूटर है, कॉमर्स डिपार्टमेंट में उसमें भी कंप्यूटर है, और इंग्लिश में भी एक यूनिट कंप्यूटर का दिया गया है। ये नई शिक्षा नीति में आया है।
बिल्कुल, और हम दिन ब दिन देखते जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसका स्वरूप बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। पहले एक सिंपल कंप्यूटर से आज डिजिटल कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं। डिजिटल लोग बिजनेस कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं जिनके थ्रू पढ़ाया जाता है, बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। यानी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, और मुझे लगता है आपने सही कहा कि इसकी जो शिक्षा है ये लोगों को लेना चाहिए अगर उनको समय के साथ अपडेट रहना है।
जी, साथ जी, बहुत जरूरी है कंप्यूटर, तो इस समय बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर जगह पे आपको कंप्यूटर का ही यूज मिलेगा। आप कहीं भी चले जाए, आप जैसे टिकट बुक करते हैं कंप्यूटर के द्वारा ही होता है, ठीक है,
करेक्ट।
और कोई भी सामान आपको परचेज करना होता है किसी भी साइट से तो आप कंप्यूटर के माध्यम से ही करते हैं,
करेक्ट।
बहुत सारी चीजें हैं जो कंप्यूटर के द्वारा की जाती है।
बिल्कुल, इवन आजकल हम देखते हैं कि नोएडा में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, रोबोट के द्वारा। अभी मैं जब लास्ट टाइम लखनऊ में था तो मैं FM में सुन रहा था और उसमें एडवर्टीजमेंट आ रहा था कि अब रोबोट द्वारा आपका होगा ऑपरेशन। तो मुझे सबसे पहला ख्याल ये आया कि अब रोबोट ऑपरेशन करेंगे, मतलब ये है कि एक बार तो सुनने में रिस्की तो लगता है, लेकिन अगर रोबोट को मतलब प्रॉपरली ट्रेन किया गया है, प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, तो वो ज़्यादा सफाई से करेंगे बनिस्बत किसी इंसान के।
जी जी, वो तो है।
तो कहीं ना कहीं
अब जैसे आप कंप्यूटर को रख लेते हैं, अभी आप किसी भी मैथ्स के वर्क को आपसे कैलकुलेशन करने के लिए किया जाए, एक लंबा सा आपको लिस्ट दिया जाए कि इसको कैलकुलेट करना है, तो आप उसको बहुत टाइम लगाओगे।
करेक्ट,
हमारा जो कंप्यूटर है ना वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता।
अच्छा, यानी आपके लैब का कंप्यूटर ज़्यादा टाइम नहीं लगाता।
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर जगह की कंप्यूटर आपके पास भी सिस्टम है, इस पर भी टाइम नहीं लेगा, बट कहने का मतलब ये कंप्यूटर।
जी जी
जी, हमारा नहीं।
ओके ओके, सबका सबका
सबका सबका।
बिल्कुल, तो तबरेज़ जी एक वर्ड आता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ई कॉमर्स। इसके बारे में बताइए क्या है।
देखिए, ई कॉमर्स है क्या, जैसे बिजनेस में लेन देन करना,
ओके,
जैसे खरीदारी और बेचना, यही हमारा क्या होता है, ई कॉमर्स होता है।
अच्छा, तो इसके जैसे कुछ एग्जांपल्स आप बता दिए, कौन कौन सी प्लेटफॉर्म्स हैं।
देखिए, जैसे आपका हो गया अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आप इससे क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं
जी
और बेचते हैं, तो ये एक सिंपल आपका वो एग्जांपल है ई कॉमर्स का।
तो तबरेज़ जी, जो सामान खरीदते, तो चलिए हम नॉर्मल कस्टमर्स हैं, बेचने वाले क्या अमेज़न कंपनी खुद के सामान रखती है या इस पर डीलर्स आके अपनी डीलिंग करते हैं।
नहीं नहीं नहीं, उसमें डीलर्स आते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को उस पर यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वहाँ पर जा करके अपने प्रोडक्ट को अमेज़न को देना होता है, फिर वहाँ से आप उसको सेल कर सकते हो।
ई कॉमर्स के क्या फ़ायदे हो रहे हैं लोगों को।
अब ई कॉमर्स से फ़ायदे क्या है सर, आप घर पर बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल जा रहा है, अब आप क्या लेंगे। लेकिन ई कॉमर्स का नुकसान भी है, मैं नुकसान भी बताना चाहता हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल,
कि जैसे व्यक्ति को क्या है, लेजी बना देता है, आलसी,
okay.
आलसी भी बनाता है। जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसान होंगे।
बिल्कुल,
सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे इसके भी दो पहलू हैं, कि आपको क्या कहते हैं, जब आप कहीं जाते हो आते हो तो आपका क्या है, बॉडी का एक्सरसाइज होता है।
Correct.
लेकिन आप एक ही जगह पे बैठ करके हर चीजें मंगा लेते हो तो उससे आपकी बॉडी की एक्सरसाइज
नहीं,
सामान तो आ जाता है, वो एक फायदा हो गया कि आप वहीं बैठे हो, आपके पास सामान आ गया, लेकिन एक नुकसान भी है कि आपकी जो बॉडी की एक्सरसाइज है वो नहीं होती।
करेक्ट, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकल मार्केट पे भी इसका बहुत असर पड़ा है,
बहुत ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि अब लोग मार्केट में नहीं जाते हैं, जाहिर सी बात है जाएंगे किराया खर्चा होगा, ये होगा, फिर बोलते हैं कि मार्केट में जाएंगे तो सामान महंगे मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि महंगे मिलते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो महंगे मिलते हैं और कुछ होते हैं कि हाँ कम भी मिल जाते हैं, ये मैंने देखा है।
जी जी जी,
हाँ, लेकिन अब क्या है कि लोग कहते हैं अब क्या आ जाए, वहाँ चलते हैं ऑनलाइन ही बुक कर लेते हैं।
तो यानी लोकल मार्केट पे कुछ बुरा प्रभाव ये पड़ता है कि जो छोटे व्यापारी, उनका कहीं ना कहीं बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ा है,
बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ा हुआ है, कि वो लोग एकदम से यानी कि अब दुकान बंद करने की कगार पे भी कुछ लोग आ गए।
करेक्ट करेक्ट,
ऑनलाइन के उससे।
बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये आप सभी श्रोता ने सुना कि ई कॉमर्स क्या है, क्योंकि ये ऐसा एक टर्म है जिसको अक्सर यूज़ किया जाता है। तो तबरेज़ जी ने इसको बताया कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा जहां हम खरीद फरोख्त करते हैं, बेचते हैं और लेते हैं सामान को, जैसा कि एग्जांपल आपको बताया बहुत बड़ी वेबसाइट है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं। तबरेज़ जी, एक और लफ्ज़ है जो कि कंप्यूटर के लिए मुझे लगता है बहुत अहम है
जी,
वो बहुत मायने रखता है, वो होता है डेटा।
देखिए डेटा है क्या, किसी के बारे में जानना यानी इंफॉर्मेशन लेना ही डेटा कहलाता है। जैसे कि हम सिंपल सा आपको एग्जांपल आप देते हैं, जैसे आपका क्या होता है आई कार्ड। आई कार्ड में होता क्या है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये आपका क्या है, डेटा है। यानी उसके बारे में जानना, किसी पर्सन के, किसी व्यक्ति के बारे में जानना ही डेटा कहलाता है।
ओके जी, तो डेटा को हम ये कंप्यूटर में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं?
देखिए कंप्यूटर, जैसे कि हम, हमारे एक कॉलेज है और कॉलेज भी क्या है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो उनकी एंट्रियाँ होती हैं यहाँ पर।
बिल्कुल,
तो वो क्या होता है, एक डेटा के रूप में, जैसे उनका अभी मैंने आपको बताया कि नाम हो गया, फादर का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, किस क्लास में आप पढ़ रहे हो, आपकी फ़ी क्या आपने पे किया है, ये सारी चीज़ें जो है डेटा के रूप में ये सेव होती हैं।
तो खाली क्या ये जो टेक्स्ट में आप बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन वही होती है या ऑडियो वीडियो के फॉर्म में भी जो होता है उसको बोलते हैं?
ऑडियो वीडियो भी होते हैं, ठीक है, ईमेल्स डेटा होते हैं, आपके नंबर्स डेटा भी होते हैं, ये सारे डेटा हैं आपके।
अच्छा, तो ये डेटा को सेव करने का काम कौन करता है कंप्यूटर में?
अब सेव करने का काम क्या, कोई भी व्यक्ति वो सेव करता है, लेकिन
मेमोरीज में जाता है,
मेमोरी में वो स्टोर होता है।
ओके,
सेव तो व्यक्ति ही करेगा ना।
अच्छा, डेटा को लेके चूंकि आजकल बड़ी बहस भी छिड़ी हुई है, बहुत सारे ऐसे हमारे पर्सनल डेटा हो जिसको एक्सेस करने के लिए जब हम किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारी परमिशंस लेते हैं।
जी जी,
तो उनको हम जब परमिट कर देते हैं तो उनको एक्सेस करने का अधिकार मिल जाता है। बहरहाल वो तो एक अलग की बात है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे डेटा को आप बता रहे हैं कि वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट के फॉर्म में हर तरह से होता है, तो डेटा का लॉस करने का भी होता है, कई बार लॉस हो जाता है, तो एक कंप्यूटर में एक डेटा को मैनेज कैसे करें बेटर वे में और उसको लॉस होने से कैसे बचाएं, इसको अगर लेके कुछ आप टिप्स देना चाहें हमारे श्रोताओं को।
देखिए इस पे क्या है, आप अपने सिस्टम पे हमेशा प्रोटेक्शन देंगे तभी आपका डेटा बचेगा,
यानी एंटीवायरस।
हाँ, अगर आप प्रोटेक्शन नहीं देते हैं तो आपका डेटा नहीं बचेगा, क्योंकि हैकर्स बहुत सारे हैं, डेटा को हैक कर सकते हैं।
तो तबरेज जी, जैसे मान लीजिए बहुत सारे तरह के डेटाज होते हैं
जी,
तो उनको ऑर्गेनाइज किस वे में किया जाए ताकि जो भी यूज़र है उसके लिए इजी हो उसको फाइंड करना? तो हमारे ख्याल से भाई फोल्डर्स का सिस्टम होता है प्रॉपर वे में अगर किया जाए
जी।
जी, तो डेटा का तो देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्व है और डेटा के बिना हम फिर क्यों ही कंप्यूटर को इस्तेमाल करेंगे। तो ये हुई बात डेटा के बारे में। अभी आपने स्टार्टिंग में, चूंकि हमने क्वेश्चन किया था, तो आपने बताया था कि कुछ हिस्ट्री बताएंगे कंप्यूटर के बारे में।
जी जी
जी,
जैसे आपने बोला था कि गणना,
गणना करेक्ट,
ठीक है, सबसे पहला जो आपका गणना यंत्र है वो अबेकस सिस्टम था। अबेकस सिस्टम को चीन में बनाया गया था और ये एक लकड़ी की आयताकार प्लेट होती थी, यानी एक फ्रेम होता था लकड़ी का जिसमें तारे लगी होती थी, उन तारों में बहुत सारी मोतियां लगी होती जिसके द्वारा हम कैलकुलेशन यानी गणना करने का वर्क करते थे।
ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ?
देखिए उसके बाद तो हिस्ट्री बहुत सारी है, उसके बाद हम बताने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं शॉर्टकट भी बताना चाहता हूँ।
करेक्ट, तो जैसे अबेकस से मुझे याद आया शायद कि बचपन में जो हम लोग स्लेट इस्तेमाल करते थे।
जी जी जी, हाँ सही कह रहे हैं आप, जो स्लेट आती है देखिए उसमें भी तारे लगे होते हैं और छोटी छोटी मोतियाँ पड़ी होती,
मोतियाँ होती
है, जिसके द्वारा हम काउंट करते हैं, कैलकुलेशन करने का वर्क करते हैं।
बिल्कुल,
वही सिस्टम है, ये अबेकस सिस्टम ही है आप कह सकते हैं। जी,
अब वो बहुत ज्यादा मॉडिफाइड होकर कंप्यूटर में आ गया।
जी जी जी,
बिल्कुल। तो हमारे श्रोताओं को बहुत सारे वर्ड्स आज क्लियर हुए होंगे जो अक्सर वो सुनते हैं सोशल मीडिया पे, किताबों में, आम भाषा में, लोगों के बोलचाल में सुनते होंगे। तो ये हमारे मोहम्मद तबरेज जी थे जो कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज से थे। सर थैंक यू सो मच, आप यहाँ स्टूडियो में आए और आपने इतनी अहम जानकारी हमारे श्रोताओं को दी।
थैंक यू अदनान जी, थैंक यू,
थैंक यू सो मच। नाउ यू लिसनिंग ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन स्टेडियो।